ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय क्रमांक 20 उसका 92 श्लोक जो है ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को संबोधित करते हुए किया है। तीन मुद्रार भोट गाय माधुकरी ग्रास धर्म हानि है लोक करे उपहास। तीन मुद्रार भोट गाय माधुकरी ग्रास धर्म हानि है लोक करे उपहास। तीन मुद्रार भोट गाय माधुकरी ग्रास धर्म हानि है लोक करे उपहास। माता जी तीन मुद्रार भोट, तीन सोने के मुद्रा के मूल्य वाला उन्हीं कंबल, गाय शरीर पर, माधुकरी ग्रास तथा माधुकरी करना, धर्म हानि है धर्म की हानि होगी, लोक करे उपहास लोक मजाक उड़ाएंगे। अनुवाद, माधुकरी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी है। ऐसे करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वो हंसी का पात्र बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे इसमें कि माधुकरी करना और साथ साथ इतना मूल्यवान कंबल ओढ़ना ये परस्पर विरोधी चीज है। ऐसे करने से व्यक्ति अपना आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और उपहास का पात्र बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिला सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। सनातन गोस्वामी जो है पूरे व्रज के गुरु थे और उनके सम्मान के लिए सारा व्रजवासी जो है आज गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं कि जैसे अन्नकूट के समय सारे व्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मगर आज की गुरु पूर्णिमा के दिन की जो गोवर्धन परिक्रमा होती है वह बहुत विशाल होती है। हालांकि लाखों से ज़्यादा लोग जो है इसी दिन गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जो है हालांकि वो साक्षात मंजरी है, जैसे कि श्रीमती राधा रानी है, उनकी जो विशेष गोपियां हैं ललिता है विशाखा है, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको मंजरी कहा जाता है। तो ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको रति मंजरी या लवंग मंजरी ऐसे माना जाता है। तो रामकेली उस इलाके में वो रहते थे, उसके पहले पश्चिम बंगाल, हालांकि जो अभी हिस्सा बांग्लादेश में है उस स्थान पर एक भारद्वाज गोत्र में कुर्मदेव के वंश में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुपम इनका आविर्भाव हुआ था। तो ये जो सनातन गोस्वामी है वो जब रामकिले में निवास कर रहे थे तो एक दिन सोते समय उनको एक स्वप्न दिखाई दिया। तो स्वप्न में उनको एक बहुत बड़ा दिव्य पुरुष दिखाई दिया और दिव्य पुरुष के हाथ में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ था और वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ सनातन गोस्वामी को अर्पण करना चाहते थे। तो उस व्यक्ति का दिव्य रूप और श्रीमद् भागवत ग्रंथ देखकर सनातन गोस्वामी जो है रोमांचित हो जाते हैं और नींद से उठ जाते हैं और यहाँ वहाँ देखते कि कहाँ पर वो दिव्य पुरुष है, कहाँ उसने भागवत रखा है, और काफ़ी बेचैन होते क्योंकि वो स्वप्न रहता है। दूसरे दिन जो है, जैसे दिन शुरू होने के बाद अपने सारे प्रातः कर्म करने के पश्चात वो भागवत के विरह में बैठते हैं, उनको बहुत उत्सुकता होती है कि कैसे ये भागवत ग्रंथ प्राप्त हो जाए। तो वही दिव्य पुरुष जो उनको स्वप्न में दिखाई दिया था, वही उनके द्वार पर आकर श्रीमद् भागवत सनातन गोस्वामी को अर्पित करता है। और उस समय से सनातन गोस्वामी हमेशा भागवत का अध्ययन करते रहे। जैसे सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो गोवर्धन परिक्रमा करते करते भागवत के अलग अलग विशेष श्लोक जो है गाते हुए गोवर्धन की हमेशा वो परिक्रमा किया करते थे। तो यही रूप और सनातन को श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, तो मालदा जिले में एक रामकेली करके स्थान है, उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से होते हैं। हालांकि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री मंडल में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहा करते थे। नवाब हुसैन शाह जो है ज़्यादातर अपना राज्य विस्तार में लगा रहता था और अपने राज्य को संभालने के लिए बहुत विश्वसनीय और योग्य व्यक्ति के लिए उन्होंने इन दोनों को नियुक्त किया था। हालांकि इन दोनों जो है इस यवन राजा की सेवा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते थे, मगर यवन राजा की जो वार्निंग्स होती है उसमें उन बताता है कि अगर आप इस पद का स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सारे हिंदू समाज को पीड़ित कर दूंगा। तो इसलिए अपने कारण लोगों को दुख न हो, इसलिए वो इस पद का ग्रहण करते हैं। फिर उनका नामकरण जो है दबीर खास सकार मलिक ऐसे हो जाता है। बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो इनको एक अलग नाम और पदवी भी दिया जाता है। और नवाब हुसैन शाह के वो बहुत विश्वसनीय मंत्री रहते हैं और सारा राज्य कारोबार चलाते रहते हैं, मगर साथ साथ जहां पर वो राम के लिए स्थान पर रहते थे वहाँ उन्होंने वृक्ष का निर्माण किया था और हमेशा साधु संतों के साथ बैठकर वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते रहते थे। हालांकि बाहरी रूप से सारा राज्य का व्यवहार करते थे, पर अंतस्था हमेशा भागवत श्रवण कीर्तन रहता था। और जब चैतन्य महाप्रभु का साथ इनकी मुलाकात होती है तो उस समय ये दो भाई जो है अपने हृदय में निश्चय कर लेते हैं कि हम अभी राजा के ये जो सेवक है उसका त्याग कर वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के सहायक बनेंगे। तो जैसे वो निश्चय करते हैं तत्पश्चात रूप गोस्वामी जो है सबसे पहले अपने आप को उस पद से मुक्त कर लेते हैं और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो है अपने घर पे पुरुषचर्या करके एक जो विधि होता है, मतलब दिन में तीन बार जो है अपने पूर्वजों को आदर व्यक्त करना, अग्नि और संतों को भोजन देना इत्यादि कार्य करते रहते थे और प्राच प्रकार के अग्नि है, समय है, इस प्रकार से वो पूजा अर्चा किया करते थे। फिर रूप गोस्वामी जो है वो अपना सारा जो धन है इकट्ठा करते हैं। एक विशाल नौका सोने से भर जाए, इतना धन जो है उनके पास रहता है। रूप गोस्वामी सबसे पहले उसमें से जो 50% है वो भगवान के और भगवान के सेवकों के बीच में बांट देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इन्होंने जो अपने धन का नियोजन किया है वो हमारे लिए सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, अपना सारा धन जो है वो परिवार के सदस्यों में वितरित करते हैं और अपने आप जो है वृंदावन और किसी स्थान पर चले जाते हैं। तो वृंदावन पर जाकर निवृत्ति लेना बहुत अच्छा है, मगर धन का विनियोग जो है सही कार्य में होना चाहिए। भगवान के जो भक्त है वो पूरी तरह से 24 घंटा भगवान का कीर्तन करने, हरिकथा करने और लोगों को भगवान का संदेश उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहते हैं, तो इसलिए उनको मदद करना जो है बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद उन्होंने 25% जो बचा है वह अपने रिश्तेदारों में बांट दिया था और 25% जो है वो आपत्कालीन समय के लिए रख दिया था। तो इस प्रकार से एक सर्वोत्तम उदाहरण जो है रूप गोस्वामी ने दिखलाया, जो श्री प्रभुपाद जी हमेशा रिकमेंड करते थे कि यह हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उस प्रकार से रूप गोस्वामी तो वहां से निकल जाते हैं, मगर सनातन गोस्वामी जो है उनको नवाब हुसैन शाह जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। मगर फिर भी सनातन गोस्वामी ने तो निश्चय कर लिया था कि मैं सब ये ऐश्वर्य को त्याग कर दूंगा, तो इसलिए वो घर पे ही बैठते हैं, एक स्लीव डाल देते हैं और संतों को जो है बुलाकर वहाँ पर श्रीमद् भागवत का दिन भर अध्ययन श्रवण करते रहते हैं। तो नवाब हुसैन शाह जो है उसको राज्य विस्तार के लिए बाहर जाना था और सनातन गोस्वामी राज्य का देखभाल नहीं करते थे, रूप गोस्वामी तो पहले ही छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले जो है अपने वैद्य को सनातन गोस्वामी के पास भेजता है और वैद्य राजा को बताता है कि सनातन गोस्वामी को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, वो तो स्वस्थ है। फिर अचानक नवाब हुसैन शाह जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो रहा है उस वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और फिर सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने इस प्रकार से झूठ को बताया है, आपकी तबीयत तो बहुत ठीक है मगर आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं राज्य कारोबार देख नहीं सकता, तो इसका उद्देश्य क्या है? रूप गोस्वामी आपके जो भाई है वो तो एक वैरागी की तरह से जंगल में घूम रहे, तो आपका उद्देश्य क्या है? तो उस समय सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जैसे आप अलग अलग गुनेगार को अलग अलग प्रकार के सजा देते हैं उसी प्रकार से आप निर्णय कर सकते हैं। तो नवाब हुसैन शाह जो है वो भी चलाक था, वो समझ गया कि सनातन गोस्वामी जो कह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। फिर नवाब हुसैन शाह जो है वो किसी ओरिसा प्रदेश में आक्रमण करने के लिए निकल जाते हैं और जाते समय वो सनातन गोस्वामी को बंदी बनाने के लिए आदेश दे देते हैं। तो आज भी रामकेली में वो स्थान है कि जहाँ पर सनातन गोस्वामी बंदिस्त थे और वहाँ के पुजारी कहते हैं कि करीब 13 महीने जो है सनातन गोस्वामी उस कारागृह में बंदी थे। उसके पास बराबर डेट्स टाइम्स है सब कि इतना समय जो है वो कारागृह में थे। तो जब ये रूप गोस्वामी को ये समाचार मिलता है कि सनातन गोस्वामी जो है राजा ने उनको कैद किया है, तो उनको वो मैसेज भेजते कि मैंने जो 10,000 सोने के मोहरा जो है वो एक व्यापारी के पास रखे है, आप उसका इस्तेमाल कर कर राजा के कारागृह से मुक्त हो सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है जेल कीपर को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको 5,000 सोने की मुद्रा दूंगा, आप मुझे इस कारागृह से मुक्त करना। तो जेल कीपर है वो कहता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो नवाब हुसैन शाह जब वापस लौट के आएगा उसको मैं क्या जवाब दूं। तो उस समय सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे मेरा उद्देश्य एक है कि मैं पवित्र तीर्थ स्थान जाना चाहता हूँ, कि जैसे आप भी पवित्र तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं, तो अगर आप मुझे मुक्त कर सकते हैं तो आपको सोने की तो मुद्रा मिलेगी ही, और साथ साथ मैं जो ऊंचा आध्यात्मिक कार्य करूँगा उसमें भी आपको फल प्राप्त होगा। और वो तुरंत कहते हैं कि 5,000 के बदले अभी मैं आपको 10,000 सोने की मुद्राएँ दे देता हूँ। और फिर वो बता भी देते कि कैसे आप नवाब हुसैन शाह को ये कथा बताइए कि सनातन गोस्वामी गंगा स्नान के लिए गए थे और उनके हाथ में ये कड़ी होने के कारण वो नदी के अंदर गिर गए और हमको उसके बाद में उनका पता नहीं लगा। तो ऐसे कर कर जो है सनातन गोस्वामी वहाँ पर अपने साथ एक सेवक लेकर वहाँ से जेल से निकल जाते हैं। तो जाते समय वो राजमार्ग से जाएंगे या बड़े रास्ते से जाएंगे तो ये भय था कि राजा जो है कुछ सिपाहियों को भेजकर उनको गिरफ्तार कर सकता था, तो इसलिए वन के पास से बिहार में जो एक पटाड़ा जगह है इस स्थान से वो जा रहे थे। तो एक दिन रात के समय जब वो एक निवास गृह में रुके तो वहाँ का जो मैनेजर था वो उनको बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा, तो उसे सनातन गोस्वामी जो है समझ गए कि जरूर इसके पीछे और कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना सेवक जो है ईशान उसको कहा कि आपके पास कुछ धन है क्या, तो वो कह देता है कि मेरे पास 7 सोने सिक्के है और इससे मैं अपने साथ ले आया हूँ। तो सनातन गोस्वामी उसके ऊपर गुस्से होते हैं कि हम वन के रास्ते पर चल रहे हैं, उस समय अगर हम हमारे साथ धन रखेंगे तो वही हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए उनसे वो 7 सोने के सिक्का लेकर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और मैनेजर को लाके देते हैं, क्योंकि उस मैनेजर के पास एक एस्ट्रोलॉजर होता है, ज्योतिष होता है, और ज्योतिष बताता है कि उनके पास जो भी अतिथि आएगा उस अतिथि के पास क्या है, कितना धन है, और वो इतना एक्यूरेट उनका कैलकुलेशन रहता था कि कितना सोने के कॉइन्स है वो भी ज्योतिष बता सकता था। तो उस मैनेजर का ये उद्देश्य था कि किस प्रकार से मैं इन दोनों की हत्या कर कर इस धन जो है उसको हड़प लूँगा। मगर सनातन गोस्वामी अपने आप से उसको ये धन देते हैं तो मैनेजर जो है कहता है कि मुझे अभी इस धन की आवश्यकता नहीं लगती है, आप तो बहुत सद्गृह देखते हैं, सद्गृहस्थ देख रहे हैं और आपका व्यवहार भी इतना विनयशील है, तो आपसे मैं कैसे धन ले सकता हूँ। तो सनातन गोस्वामी उसको कहते हैं कि अगर आप इस धन को नहीं लेंगे तो जैसे हम थोड़े आगे जाएंगे और कोई हमसे इस धन को लूट लेगा, इससे अच्छा है कि आप ही अपने पास इस धन को रख लीजिए। और फिर उनको कहते हैं कि आप मुझे इस बहुत सारे टीले हैं और घना जंगल है उसमें से मुझे बनारस के ओर जाना है, तो कौन सा रास्ता आसान सा रहेगा उस रास्ता आप दिखाइए। फिर वो जो है वो उसकी व्यवस्था कर देता है। जैसे उस घने जंगल से बाहर आते हैं सनातन गोस्वामी जो है अपना जो सेवक है ईशान है उसको कहते हैं कि आप वापस चले जा सकते हैं, और उसके पास जो है किसे में और एक कॉइन बचा हुआ रहता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो आप अब रख लेना और वापस चले जाना, इसके आगे जो है मैं स्वयं निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से घने जंगल में किसी भी प्रकार का कुछ खाना बिना नहीं लेते हुए वो चल पड़ते हैं, और जहाँ चैतन्य महाप्रभु बनारस में रुके रहते हैं उस स्थान के पास वो चलते हैं। मगर जाते जाते जो है उनका ब्रदर इन लॉ जो है उनको रास्ते में मिलता है, वो भी गवर्नमेंट के सेवक रहता है, तो वो सनातन गोस्वामी को जबरदस्त से एक मूल्यवान ब्लैंकेट है वो दे देता है, और उस ब्लैंकेट को लेकर ही सनातन गोस्वामी आगे चलते हैं। तो जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान तक पहुंचते हैं, चैतन्य महाप्रभु को तुरंत समझता है कि सनातन गोस्वामी उनके पास आ गए हैं, तो चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं कि आप जाकर उनका स्वागत कीजिए, उनको घर ले आइए। मैं जैसे चंद्रशेखर आचार्य बाहर जाते हैं तो उनको कोई वैष्णव दिखाई नहीं देता है, उनको कोई एक वैरागी दिखाई देता है जिसके बहुत बाल वगैरह बढ़ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है घर के बाहर आकर सनातन गोस्वामी को बड़े प्रेम से गले लगाते हैं, और सनातन गोस्वामी है उससे लज्जित होते हैं, उनको लगता है कि मैं इतना पतित जीव हूँ और साक्षात भगवान जो है मुझे आलिंगन कर रहे हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति, कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। तो उसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्त के अंदर इतनी शक्ति है कि एक भक्त सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है, सारे ब्रह्मांड में जितने भी पतित जीव है वो सारे एक वैष्णव भक्त के सानिध्य से कृपा के कारण मुक्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बड़े ऊंचे कुल में उसका जन्म लिया हो मगर भगवान का भक्त है तो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता, मगर कोई व्यक्ति बहुत नीचे के योनि नीचे के जाति में जन्म लिया हो मगर भगवान का भक्त है तो वो सर्वश्रेष्ठ है और सभी लोगों का उद्धार वो कर सकता है। तो इस प्रकार से भागवत के श्लोक का उदाहरण देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको महारौरव नरक से बचा लिया है। महारौरव नरक ऐसे होता है कि जहाँ पर जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं ऐसे लोगों को इस नरक में रखकर बहुत सारी यातनाएं देते हैं, तो आपको इस प्रकार के भयंकर नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने सुना था कि आपको राजा ने बंदी बनाया था, तो आप कैसे उसके कैद से मुक्त हो गए उसके बारे में पूछते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु है वो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य उनका परिचय सनातन गोस्वामी को कर देते हैं। फिर चंद्रशेखर आचार्य को बताते हैं कि आप अभी सनातन गोस्वामी के स्नान की व्यवस्था करो, साथ साथ उनके जो बाल बड़े हैं उस बाल काटने की व्यवस्था करना और उनको अच्छे नए वस्त्र प्रदान करना। सनातन गोस्वामी जो है बहुत सादे तरीके से रहते थे और मन में वैराग्य था, कोई भी आसक्ति नहीं था। तो जैसे चंद्रशेखर आचार्य उनको नए वस्त्र प्रदान करते हैं तो सनातन गोस्वामी उसको स्वीकार करने के लिए नकार देते हैं। फिर तपन मिश्रा से वो जूने वस्त्र लेते हैं, उनका एक जूना धोती लेते हैं और उसके टुकड़े कर अपना वस्त्र बना लेते हैं। और फिर तपन मिश्रा के घर पर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी उनको भी आमंत्रित करते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए बैठते सनातन गोस्वामी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा को आदेश देते हैं आप सनातन गोस्वामी हैं उनका भी प्लेट लगा दो और उनको भी प्रसाद दे दो। मगर सनातन गोस्वामी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रसाद लेने के लिए इनकार करते, वो बहाना बनाते कि मुझे कुछ कार्य बाकी है, ये कार्य होने के बाद मैं प्रसाद लूँगा। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेकर निकल जाते हैं, उस समय फिर सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के महाप्रसाद लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वहाँ पर एक महाराष्ट्र से पुरोहित बरव अपने परिवार के साथ बनारस में रहता था, उसके पास जो है चैतन्य महाप्रभु कभी प्रसाद के लिए जाते थे। तो सनातन गोस्वामी को ये पुरोहित जो है आमंत्रण करता है कि रोज आप मेरे घर पर आकर प्रसाद पा सकते हैं। मगर सनातन गोस्वामी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वैराग्य मतलब वो माधुकिरी करके जीवन जीना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि मैं लोगों के घर द्वार पर जाकर माधुकिरी कर प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। और उसके बाद मैं जब ये चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आते हैं, और सनातन गोस्वामी देखते कि चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करते हुए कि वो मेरे कंबल की ओर देख रहे, तो इतना बहुमूल्य कंबल देखकर सनातन गोस्वामी जो है वो तुरंत ये समझ जाता है उनको कि ये चैतन्य महाप्रभु ये मेरे मूल्यवान कंबल से खुश नहीं है। कि जैसे सुबह हमने प्रवचन में सुना कि सनातन गोस्वामी जो है वो निपुण थे, वो तुरंत दूसरे के मन के भाव जो है वो समझ सकते थे। तो तुरंत समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु क्यों बार बार मेरे कंबल के वो देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये कंबल उनको पसंद नहीं है। तो फिर सनातन गोस्वामी जो है वहाँ से चले जाते हैं। एक घाट पर देखते हैं कि एक पथिक जो है उसके पास पुरानी कंबल है, तो उससे ये नया कंबल लेकर पुरानी कंबल लेकर वो वापस आते हैं। और जब भी चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो नई अच्छी कंबल थी वो कहाँ गई। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं जाकर एक गरीब व्यक्ति को उसको दे दिया, उसकी जो कंबल है वो मैंने ले ली। तो चैतन्य महाप्रभु करते कि मैं पहले ही इस विषय पर विचार किया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अत्यंत दयालु है, और वो उनकी कृपा का मतलब है कि उस व्यक्ति का सारा भौतिक आसक्ति वो नष्ट कर देते हैं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है या भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, तो हृदय के अंदर जो भी भौतिक आसक्ति है उसको निकालना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण जो है आपकी सारी भौतिक आसक्ति है वो निकाल देंगे। और उदाहरण देते हैं कि जैसा कोई एक निष्णात वैद्य होता है, वो पेशेंट को है रोगी को पूरी तरह से ठीक करता है, रोग के कुछ भी अंश उसके शरीर में नहीं रहने देता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी रोग का अंश शरीर में रहेगा तो वो फिर से रोग शरीर में फैल सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है दयालु होने के कारण सारा ऐश्वर्य के जो चिन्ह है वो पूरी तरह से नष्ट किए हैं। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं कि तीन मुद्रा यानी कि वो जो बहुमूल्य कंबल थी उसका दाम था कि सोने की तीन मुद्रा। यानी आप समझ सकते कि कितना सुंदर और बहुत ऐश्वर्यशाली वो कंबल हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति माधुकरी कर रहा है और उसके शरीर के ऊपर इतनी बहुमूल्य कंबल है, तो ये परस्पर विरोधी कार्य होता है। कि जैसे हमने देखा था कि सनातन गोस्वामी जो है उनको जो भी कार्य दिया था उसमें से एक कार्य ये था कि जो व्यक्ति रिनाउंस ऑर्डर में है, बैरागी है, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो एक विरक्त व्यक्ति का उत्तम उदाहरण सनातन गोस्वामी दिखाना चाहते थे। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए कि जैसे सुखदेव गोस्वामी है, उनका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि वो केवल गो दोहन मतलब गाय का दूध निकालना। तो जितना समय गाय का दूध निकालना होता है उतना समय ही वो गृहस्थ व्यक्ति के पास जाकर रुकते थे और केवल गाय का दूध जो है भिक्षा के रूप में लेकर वहाँ से चले जाते थे। तो जो भाग्यशाली गृहस्थ है उनको सुखदेव गोस्वामी के संग से लाभ होता था और केवल उनको भगवान की भक्ति प्रदान करने हेतु वो माधुगिरी करने के लिए इस प्रकार से जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति वैराग रिनाउंस्ड ऑर्डर में है उनको इनके उदाहरण से सीखना चाहिए। हमें जितना आवश्यक है केवल उतना ही चीज़ हमें स्वीकार करना चाहिए, उससे कोई भी आवश्यक चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ये परंपरा हम देखते हैं कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने संन्यास लेकर उन्होंने वैरागी धर्म विरक्त धर्म का आदर्श स्थापित किया। तो उनके जो षट गोस्वामी है उन्होंने भी ये उत्तम उदाहरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और श्री प्रभुपाद जो है उन्होंने भी बहुत कठिनाई का सामना करते हुए ये हरे कृष्ण आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। और आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि ये विरक्ति है वो केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी वही करते हैं। हमने देखा है कि जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में है वो भी इस तत्व का पालन कर सकते हैं। कि जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है जो रशिया में प्रचार करते हैं, तो एक दिन जो है रशिया में प्रचार करते समय एक पुस्तक वितरण करने वाली उनकी जो शिष्या थी उन्होंने उनको घर में आने के लिए निमंत्रित कर लिया। तो इन्होंने देखा कि मुझे बहुत जगह जाकर प्रचार करना है, मगर वो जानते थे कि ये 13 साल से है नियमित रूप से पुस्तक का वितरण कर रही है। फिर उनके ध्यान में आना कि गुरु को इतना भी व्यस्त नहीं होना चाहिए कि शिष्य के लिए उसके पास समय न रहे। तो फिर उनका जो आमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं। तो रशिया के एक शहर के मध्य में उनका एक छोटा सा घर रहता है। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुराना बिल्डिंग है और उसमें एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में प्रवेश करने के बाद उनको लगता है कि मैं किसी वृक्ष के एक कुटिया में आ गया हूँ, क्योंकि घर के अंदर कोई फर्नीचर ही नहीं रहता है, केवल एक छोटा सा टेबल रहता है, वहाँ पर गोवर्धन शिला रहती है, उनके सामने कुछ भोग लगाया हुआ रहता है और चटाई डाला रहता था। हालांकि वातावरण भौतिक रूप से बहुत सादा था मगर आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा वाइब्रेशंस वहाँ पे था। फिर वहाँ पर वो बैठ गए, फिर उनके साथ जो ट्रांसलेटर आए थे उन्होंने सब बताना चालू कर दिया कि कैसे ये जो माता जी है उनको आपने 13 साल पहले पुस्तक वितरण करने का आदेश दिया था। तो तब से जो है 13 साल ये माता जी है हफ्ते 7 दिन में से 6 दिन रोज जो है 8 घंटा पुस्तक वितरण करती है, और जब वो बीमार होती है तभी उसने ब्रेक लिया हो, उसके पश्चात जो है कभी उसने ब्रेक नहीं लिया है। और उन्होंने वर्णन किया कि केवल उसके पास जो है भक्त, बाकी भक्त लोग कहते थे कि हम देखते कि उसके पास केवल एक ही साड़ी जो है वो हमेशा वो पहनती है और उसको ही साफ करके रखती है। और उसके बाद में जो है उसने अपने जो विग्रह थे तो वहाँ पर एक फटा हुआ ऐसा इन्वेलप था वो निकाल लिया और उसमें से $1,500 निकाल कर अपने गुरुदेव उनके हाथ में उन्होंने दे दिया। तो श्री प्रभुपाद के जो शिष्य उन्होंने अपने सहायक को वो दिया, फिर उन्होंने देखा गिन के तो $1,500 थे। तो उन्होंने बताया कि अगर एक आदमी 2 साल काम करता है तो उसका इतना सेविंग्स वहाँ के देश में हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि आप जो है इस लक्ष्मी का उपयोग इस साल में कार्तिक में व्रज में यात्रा के लिए जा रहा हूँ तो आप ही इस लक्ष्मी को रख कर आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि अगर मैं ये लक्ष्मी लेकर यात्रा में आऊँगी तो जिन लोगों ने पुस्तक वितरण के समय जो डोनेशन दिया है उनको लाभ नहीं होगा। अगर ये धनराशि अगर आप किसी भगवान के अच्छे कार्य में लगाते हैं तो जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उनका बड़ा उच्च लाभ हो सकता है। तो ये देखकर जो है उन्होंने निश्चय किया कि फिर वो गुरुजी है वो कहते हैं कि बाकी शिष्यों को आदेश देकर वो उनको अगले साल जो है व्रज यात्रा में आने की व्यवस्था वगैरह कर देते हैं। तो कैसे है कि ये जानना बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार से जब हम बड़े जिम्मेदारी से भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं और हमेशा ये भाव रहता है कि हृदय के अंदर कि मैं एक सेवक हूँ और अपने को आवश्यक जितना चीज़ है वो हम रख लेते हैं तो उससे भगवान जो है प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सनातन गोस्वामी के शिक्षा से हम सीख सकते हैं। हालांकि उनके पास इतना राज प्रसाद था, इतने सारे ऐश्वर्य थे, मगर जब भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर केवल टूटे फूटे वस्त्र रखे और केवल जो है खाने के लिए माधुकरी मांगकर जो भी भिक्षा के रूप में प्राप्त होता था वो उसका स्वीकार करते थे। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर कि चैतन्य चेतामृत में ये संवाद आता है तो कुछ कभी चैतन्य महाप्रभु छात्र बनते हैं और रामानंद राय जो अध्यापक बनकर उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी में चैतन्य महापुरुष छात्र बनते हैं और सनातन गोस्वामी छात्र बनते हैं और चैतन्य महाप्रभु जो अध्यापक रूप में 2 महीना जो है बनारस में उनको सारी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसमें से बहुत सारे विषय जो है उस पर चर्चा होती है किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव का कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो विशेष रूप से जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को शरणागत जाते हैं वो एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार से साधक को अपने गुरु के प्रति शरणागति प्रकट करना चाहिए। तो इसलिए जो है गुरु के प्रति जाकर केवल अध्यात्मक के विषय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए और जिज्ञासा करते हुए हम बहुत विनम्रता से जिज्ञासा करना चाहिए और फिर गुरु का उपदेश सुनने के बाद उस प्रकार से व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। तो सनातन गोस्वामी हमेशा कहते हैं कि मैं जो है अत्यंत पतित हूँ, न तो हमारा जन्म है उच्च कुल में हुआ हूँ, न तो मेरे साथ जो सहवासी थे वो अच्छे लोग थे, साथ साथ मैं अत्यंत पतित व्यक्ति हूँ, और एक अंधकूप में मैं हमेशा अनेक यातना भोगता हुआ रहता था। मुझे ये पता नहीं था कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे हित में कौन सी चीज़ है वो भी मैं नहीं जानता था। साथ साथ लोग जो है मुझे पंडित मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं, और मैं भी उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ। तो मैं जो है आपका भी शरणागत सेवक हूँ। आप मुझे मेरा कर्तव्य क्या है उसके बारे में कृपा करके बतलाइए। तो इस प्रकार से ये जो तरीका है, इससे हम गुरु के पास जा सकते हैं, तभी जो है गुरु का उपदेश हमारे हृदय में स्थित होगा। जितना भौतिक आसक्ति हृदय के अंदर रहेगा, उतना गुरु का उपदेश हृदय में ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकता है। तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को कहते हैं, नारद भक्ति का एक सूत्र का श्लोक बताते हुए, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना जानने के लिए बहुत उत्सुक है, जरूर भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और भगवान के कृपा से ही उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। और आप विशेष है कि आपके हृदय में इस प्रकार का वैराग्य है, और भगवान के आपके ऊपर विशेष कृपा होने के कारण आप को जरूर भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। आप भगवान की भक्ति करने के योग्य व्यक्ति है, और साथ साथ भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग का रक्षण करने का कार्य भी आप सक्षम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विस्तृत रूप से ये चर्चा होती है कैसे कि जीव का असली स्वरूप क्या है। तो भगवान का वो नित्य दास है, उससे ही वो प्रकृति के जो विविध ताप है उससे मुक्त हो सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि किस प्रकार से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका क्या लक्षण होता है। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण कहते हुए वो करते हैं कि वो समझ सकता है कि कैसे इस भौतिक संसार में उसको अलग अलग प्रकार की व्याधि भोगना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि पूर्व काल में राजा लोग जो थे वो गुनेगार को सजा देते हुए उसको पानी में डुबाते थे, बहुत देर तक नीचे रखते थे, फिर कुछ समय के लिए ऊपर उठाते थे, जैसे ही वो कुछ सांस ले तुरंत उसको फिर से पानी के अंदर डालते थे। तो इसी प्रकार से माया जो है कार्य करती है कि आपको अलग अलग प्रकार से पीड़ा देकर आपको समझाना चाहती है कि इस भौतिक जग में असली सुख नहीं है, और हमें जो है केवल भगवान के भक्ति में ही असली सुख प्राप्त हो सकता है। रो का दूसरा एक उदाहरण देते कि कैसे भगवान जो है परम पिता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत है, हम उनके अंश है, हम उनके पुत्र है, और हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा खजाना जो है रखा है। हालांकि हमको इस भौतिक संसार में विविध प्रकार के ताप भुगतना पड़ता है, इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, मगर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो इन सभी तापों से आप मुक्त हो सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के विविध अवतार के बारे में उनको बताते हैं, उनके कैसे विविध अवतार है, फिर उनकी कितनी विविध प्रकार की शक्ति है वो कहते हैं। कहते हैं कि कैसे नारद मुनि जो है द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण को देखने जाते हैं तो एक ही भगवान श्री कृष्ण 16108 रूप में उनको दिखाई देते हैं। जैसे सोबरी मुनि होते हैं तो सोबरी मुनि जब भी अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उनका एक ही रूप होता है, और वही सेम प्रकार से जैसे टीवी में हम देखते हैं कि एक सब टीवी में एक ही पिक्चर दिखाई देता है, तो इसी प्रकार से सोबरी मुनि के पास जो भी शक्ति थे उन्होंने अपने आप को 50 रूप में विस्तारित किया था, मगर हर रूप जो है वही कार्य कर सकता था। पर भगवान जो है अपने आप को स्वतंत्र रूप में विस्तारित करते हैं, और 16108 रूप जो है वो एक ही समय पर विविध कार्य करने में सक्षम थे। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, ऐसे भगवान के बारे में चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बताते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता है उसके बारे में बताते हैं, और साथ साथ जो विशेष आत्माराम श्लोक है उस श्लोक की व्याख्या करते कि सनातन गोस्वामी जानना चाहते थे कि आपने जो आत्माराम श्लोक है जो सर्व भट्टाचार्य को सिखाया था आप कृपा करके मुझे भी सिखाइए। तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग रूप से उसका अर्थ बताते और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलता हो वो भी भगवान के रूप से आकर्षित होकर उनके यहाँ आता है, और इसी तत्व को बताते समय वो मृगारी की जो कथा है वो भी बतला देते हैं। तो ये सारा उपदेश 2 महीना करने के बाद चैतन्य महाप्रभु है वो सनातन गोस्वामी का कहते हैं कि आपकी आपको अभी मैंने जो भी बताया है वो सारे ग्रंथ के रूप में लिखना है, आपको वृंदावन जाकर वृंदावन के लुप्त लीला स्थली है उनको पुनर्स्थापित करना है, और साथ साथ वैष्णव आचार कि किस प्रकार से वैष्णव ने आचार करना चाहिए उसके बारे में वो कहते हैं, और वैष्णव जो शिष्टाचार है कि कैसे वैष्णव का व्यवहार होना चाहिए, विशेष करके जो वैरागी है उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, और सारे शास्त्र का निचोड़ कर वो ग्रंथ के रूप में लोगों को आप दीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ इतने दिन का संग करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार सनातन गोस्वामी वृंदावन में आते हैं, तो उस समय सबसे पहले उनकी मुलाकात सुबुद्धि राय से होती है। सुबुद्धि राय जो है वो एक बड़े जमींदार होते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो आकर व्रज में निवास करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको यही सेवा दी थी कि मेरे जो भक्त आएंगे उनकी आप देखभाल करना। तो सुबुद्धि राय सबसे प्रथम सनातन गोस्वामी को वृंदावन के 12 वन में घूमने के लिए ले जाते हैं, और सारे 12 वन जो है दिखाते हैं, और बाद में कहते हैं कि ये स्थान है इस स्थान पर आप निवास कर सकते हैं, मगर सनातन गोस्वामी जो है उस स्थान को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं जो है रोज स्वेच्छा के अनुसार अलग अलग वृक्ष के छांव में निवास करते रहूँगे। और उस समय उनको समाचार मिलता है कि रूप गोस्वामी यहाँ वृंदावन आए थे और अभी वो जगन्नाथपुरी की ओर चले गए, और चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी की ओर गए हैं, तो वहाँ पर वो भगवान को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भी एक प्रसंग ऐसे आता है कि एक बार जब ही सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं भोजन के लिए आमंत्रण देते हैं, तो यमल गार्डन जो है स्थान है वहाँ पर आने के लिए कहते हैं, तो उस समय जो है ज्येष्ठ का महीना रहता है, और जहाँ पर सनातन गोस्वामी के निवास स्थान है वहाँ से अगर उस स्थान पर जाना है तो 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ओर से सिंहद्वार से जाए, या जो समुद्र का रास्ता है उस रास्ते से जाए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखते कि भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सेवक हैं, उनके सेवा करने के लिए दिन भर जो है उन वो सिंहद्वार से आते जाते रहते हैं, अगर मैं उस भाग से प्रवेश करूँगा तो हो सकता है कि किसी सेवक का मेरा स्पर्श हो जाएगा और उससे कंटैमिनेशन हो सकता है, और वो ज्येष्ठ का महीना है और दोपहर के समय जब समुद्र की जो बालू है वो बहुत गर्म हो जाती है, और ऐसे गर्म बालू से चल के हुए चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो है तुरंत उनको समझ में आता है कि ये इसी रास्ते से आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप तो इस रास्ते से आ सकते थे, ये तो नज़दीक का रास्ता है, अच्छा रास्ता है, मैं सनातन गोस्वामी उत्तर देते कि मैं जो है पतित होने के कारण मुझे इस रास्ते से आने का कोई अधिकार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मन में सनातन गोस्वामी के इस प्रकार के आचरण से बहुत आनंदित होते थे। और फिर यही जो है जैसे रामानंद राय है वो विशाखा है और वो उनके मन में किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रहती थी। जब भी वो तरुण युवती है उनको जब जगन्नाथ का सामने किस प्रकार से नृत्य करना है वो सिखाने के लिए स्वयं जो है तैयार करते थे, मगर स्पर्श करते हुए उनके हृदय में किसी भी प्रकार का विचार भी नहीं आता था। तो उनके माध्यम से इंद्रिय संयमन कैसे करना ये हमको सिखाया। फिर दामोदर पंडित थे, वो न्यूट्रलिटी यानी कैसे एक तत्व के अनुसार व्यवहार करना वो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। हरिदास ठाकुर है, उनके जीवन से हम सहनशीलता ये गुण सीख सकते हैं। और सनातन गोस्वामी है, उनसे नम्रता और किस प्रकार से व्यक्ति एक वैराग्य जीवन में रहना चाहिए ये सीख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन में आकर निवास करने लगते हैं और जब भी गौड़िया भक्तगण बंगाल से व्रज यात्रा के लिए जाते थे और वापस लौटकर पुरी में आते थे तो उस समय सारे पुरी के जो वैष्णव भक्तगण है वो हमेशा पूछते थे कि आप वृंदावन में गए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे है, वो भी क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, किस प्रकार से माधुरी खाकर वो जो है जीवन बिता रहे हैं। तो फिर सारे जो भक्तगण हैं बंगाल के वो वर्णन करते थे कि कैसे वो हमेशा जो है भगवान का नाम का कीर्तन करते रहते हैं, लीला का स्मरण करते हैं, भगवान के दिव्य लीला के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार बहुत सारे ग्रंथ का निर्माण करते हैं। तो सारे वैष्णवगण पूरी में यही चर्चा करते थे कि कैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहकर चैतन्य महाप्रभु जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए हर चीज़ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो समाचार है, जब भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कर रहे तो ये जो है सारे बंगाल में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के वैराग्य और भक्ति के बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो रामकेली में सनातन गोस्वामी के घर पे जो पुरोहित था जब उसको समझ में आता है कि सनातन गोस्वामी जो है वो अभी वृंदावन में महान आचार्य बन गए तो वो रामकेले से वृंदावन आकर सनातन गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण कर लेता है। और सनातन गोस्वामी का एक महत्व का है कि ब्रजवासी जो है सनातन गोस्वामी के प्रति बहुत प्रेम किया करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी किसी व्रज के गांव में प्रवेश करते थे तो सारा गांव जो है उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित होता था। तो वहां पर जो वृद्ध ब्रजवासी है वो सनातन गोस्वामी को अपना पुत्र मानते थे, बाकी लोग जो है सनातन गोस्वामी का अपने घर का है अपना ही भाई के रूप में जानते थे, या कई लोग जो है सनातन गोस्वामी को गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी किसी गांव में प्रवेश करेंगे तो लोगों के आँखों से आश्रु होते थे, वो आनंद के आश्रु रहते थे। और जैसे दूसरे दिन सनातन गोस्वामी उस गांव से निकलने लगते थे तो विरह के आश्रु जो है उनके आँखों में से आते थे। और सनातन गोस्वामी है जब भी गांव में बैठते थे तो हर एक व्यक्ति को पूछते थे कि आपके परिवार कैसे चल रहा है, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, आपके बेटे का कैसे व्यवहार है, आपके बेटी का कैसा व्यवहार चल रहा है। उसके बाद में ये भी पूछा करते थे कि कैसे आपके घर में गैया है, वो गैया कितना दूध देती है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, बाद में वो खेती के बारे में भी पूछते कि किस प्रकार से इस साल में आपने खेती किया है, कैसे अनाज आया है। फिर उनके आरोग्य के बारे में भी पूछताछ करते थे कि कैसा आपका आरोग्य है। अगर कोई कहता है कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है या कुछ है, तो वो तुरंत उसको उपदेश करते कि आप इस प्रकार से कुछ दवाई जो है बना कर ले सकते हैं। तो ब्रजवासियों के भी जो भी समस्या होती थी वो ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को कहते थे और सनातन गोस्वामी जो है उसके ऊपर उनका उपाय बताते थे। तो इस प्रकार से बहुत प्रेम का व्यवहार जो है सनातन गोस्वामी और ब्रजवासी का हुआ रहता था। और जब सनातन गोस्वामी जो है चक्रतीर्थ पर निवास करते थे, तो उस स्थान पर जो है वो अपना शरीर त्याग देते हैं। और जैसे ब्रजवासियों को ये समाचार फैलता है तो सारा ब्रज में ये समाचार फैल जाता है। और फिर ब्रजवासी जो इकट्ठा होकर विचार करते हैं कि हमारे जो गुरुदेव है सनातन गोस्वामी, वो हमको छोड़ के गए हैं, तो उनके कृतज्ञता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो वो जानते थे कि सनातन गोस्वामी जो है उनको गोवर्धन परिक्रमा बहुत प्रिय थी, तो इसलिए हम सभी लोग अगर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो उससे सनातन गोस्वामी आनंदित हो सकते हैं। तो इसलिए उस समय से आज तक ये प्रथा चलती आ रही है कि आज के दिन पर, गुरु पूर्णिमा के दिन पर, लाखों के संख्या में जो है लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। जैसे किसी ने परिक्रमा करते हुए एक ब्रजवासी को पूछा था कि आप इस दिन पे क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि सनातन गोस्वामी हमारे गुरु है और हम जानते हैं कि अगर हम इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। और श्री प्रभुपाद जी है सनातन गोस्वामी के जो शिक्षा थी उसमें से दो उदाहरण जो है वो हमेशा बहुत बार इस्तेमाल करते थे अपने प्रचार में, कि जैसे एक कोई धातु है उसके ऊपर मरकुरी जो है उसका अगर प्रक्रिया होता है तो सोने में उसका रूपांतर हो सकता है, तो एक विधि बताया गया है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कितना भी पतित हो या कितने भी नीचे कुल में उसका जन्म हुआ हो, अगर वो गुरु के सानिध्य में आता है तो भगवान का उत्तम भक्त बन सकता है। और साथ साथ दूसरा था कि जो दूध है, अगर सर्प उस दूध को स्पर्श करता है तो वो दूध होते हुए वो विष जैसे रूपांतरित होता है। तो इसलिए हरिकथा बहुत शक्तिशाली है, मगर अगर इस हरिकथा को अगर हम अभक्त के मुख से सुनते हैं तो इससे हमारा भी हृदय प्रदूषित हो सकता है। इसलिए हरिकथा जो है वो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए आचार्यों के टीका के अनुसार सुनना बहुत आवश्यक है। तो ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा है कि जिससे हम देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी ने एक आदर्श हमारे लिए प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से वैष्णव का व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से वैष्णव सदाचार होना चाहिए। और विशेष करके हम जो भी कार्य करते हैं, हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का भौतिक आसक्ति हम रखते हैं तो वो हमारे भक्ति में बाधा हो सकता है। तो ये सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के ऊपर कुछ चर्चा हमने की। अभी थोड़ा समय जो है हम हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे याद है कि 1994 के आसपास जब इस पहले बार भक्ति चारू स्वामी महाराज राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, तो जैसे ही एक प्रगात है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि ये शिला प्रभुपाद जी के एक सीनियर शिष्यों में एक है। तो ऐसे करके उन्होंने जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन करते वैसे इंट्रोडक्शन कर दिया, फिर भक्तिचरु महाराज हैं उन्होंने प्रवचन कर लिया। फिर सब प्रोग्राम समाप्त होने के बाद जिस व्यक्ति ने इंट्रोडक्शन किया था उसको उन्होंने नज़दीक बुलाया, वो बताया कि आप जो है मुझे इस प्रकार से इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि मैं जो है श्रील प्रभुपाद जी से स्नेह शिष्यों में नहीं हूँ, क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद जी को मिला 1977 में। मेरे से बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य है वो मेरे से सीनियर है, तो अगर कोई व्यक्ति मुझे इस प्रकार से संबोधित करता है तो उससे मुझे बहुत संकोच होता है। मैं हमेशा अपने आप को मेरे जो गॉड ब्रदर्स है जो मेरे से बहुत पहले भक्ति में आए हैं, उनको श्रील प्रभुपाद का बहुत अच्छा संग मिला है, उनका मैं सेवक हूँ और उनसे मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आज तक जो है ये मेरे स्मरण में रहा। और आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत नम्रता से और बड़े मीठे रूप से वो बोलते थे। तो मैंने ये सुना तब याद आ गया कि जैसे कई मठ में हम देखते या बहुत सारे मठ होते हैं या बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, और कई बार जो है विवाद होकर उनके बहुत बहुत टुकड़े हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत बार जो महंत रहते हैं तो महंत के अंदर ये भाव रहता है कि मैं आश्रम में रहता हूँ मगर मैं नंबर टू का रहूँ तो उसे क्या प्राप्त होगा, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं का आश्रम बनाता हूँ तो फिर मैं नंबर एक का रह सकता हूँ। तो ये जो भाव है ये भाव के कारण जो है बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह जो है वो विवाद होता है और अलग अलग आश्रम जो है वो निर्माण होते हैं। भक्तिचारु महाराज जो है वो हमेशा इसी भावना से रहे और हमेशा जो है वो अपने गुरु भाई जो है अलग अलग प्रकार से उनकी कैसे मैं सेवा करूं इस भावना से रहते थे। तो मैंने देखा कि 1977 में आज जो दिन हम मना रहे सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन, उस समय 1977 में श्रील प्रभुपाद जो है बहुत बीमार थे और अंतिम दिनों में व्रज में निवास करते थे। तो आज के दिन में भक्तिचारु महाराज जो है सनातन गोस्वामी का जो समाधि है मदन मोहन मंदिर के पीछे, वहाँ जाकर पुष्पमाला और प्रसाद श्रील प्रभुपाद जी के लिए लेकर आते हैं और वो उनको अर्पण करते हैं। और हमने देखा कि वो भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ सेवा करने के लिए वो सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिन पे ही चले। और जब श्रील प्रभुपाद जी बीमार थे तो उस समय 24 घंटा जो है अलग अलग सेवक उनकी सेवा करते थे। तो भक्तिचारु स्वामी महाराज है उनको सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे जो है वो सेवा दिया था, और श्री प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करने का ऐसा उनका सेवा था। तो श्री प्रभुपाद जी जो है उनको भक्तिचारु महाराज हमेशा विनंती करते थे कि कैसे अगर आप 3 साल और रहेंगे तो बहुत सारा प्रचार कार्य हो सकता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ कि केवल 50% मेरा कार्य जो है पूरा हुआ है, 50% कार्य अभी तक बाकी है। मैं अलग अलग स्थान पर कृषि क्षेत्र का निर्माण करना चाहता हूँ कि अगर कृषि क्षेत्र का निर्माण होगा तो वर्णाश्रम का जो कार्य है वो भी पूरा हो सकता है। तो उस समय श्री प्रभुपाद जो है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, या तो सारे शिष्य आते थे और फिर कैसे जगभर में विविध प्रकार का प्रचार चल रहा है उसके बारे में बताते थे। तत्रेय ऋषि करके शिष्य है वो आए थे, उन्होंने बताया कि जैसे पर्शिया देश है वहाँ पर भी लोग कृष्ण भावना का स्वीकार कर रहे हैं। तो शिल्पा प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भी वहाँ पर आकर प्रचार करूँ। तो शिला प्रभुपाद जी को थोड़ा सा भी ठीक लगता था तो उनकी इच्छा होती थी कि मैं किसी देश में जाकर कृष्ण भावना का प्रचार कर लूँ। मैं शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे जिन लोगों ने शिला प्रभुपाद जी के उन दोनों के अगर फोटो देखे होंगे तो देखेंगे कि तो केवल हड्डी जो है वो बची जैसी थी। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि अभी तो मेरा केवल बंडल ऑफ बोन्स रहा है। तो भक्ति चारु महाराज कहते थे कि कहे उनको कि आपका जो शरीर है ये तो दिव्य शरीर है, और उस समय जो है ये जैसे श्री प्रभुपाद व्हीलचेयर पे थे तो उस समय भी वो लास्ट यात्रा जो है लंदन जाकर आए थे। फिर बाद में उन प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करूं, मगर उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, इतनी फ्रेजाइल थी कि वो परिक्रमा भी करने के लिए योग्य नहीं है, ऐसे उनके शिष्यों को लगते थे। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम ठीक है गोवर्धन परिक्रमा नहीं तो मुझे व्रज परिक्रमा के लिए लेके चलो। मगर वहाँ पर जो वैद्य उपस्थित थे वो तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि ये तो संभव नहीं है। मुश्किल प्रभुपाद जो है बार बार विनंती करते थे, तब उस समय भक्ति चारु महाराज है वो उनको बताने लगे कि प्रभुपाद आपने तो एक बार हमको कहा था कि अगर किसी चीज़ के बारे में संदेह है तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, हम जो है अननेसेसरी रिक्स नहीं लेना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने कहा तो ये तो भौतिक है, मगर आखिर जो है श्री प्रभुपाद को सारे शिष्यगण समझाते हैं, फिर श्री प्रभुपाद जो है वृंदावन परिक्रमा जाने के लिए रोक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है अभी बहुत भक्तों के मन के अंदर ये प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्यों भक्ति चारु महाराज जो है वो इस समय जो है US में जाना चाहते थे, कि उन्होंने देखा अपने गुरु की सेवा करते हुए कि कैसे श्रील प्रभुपाद जो है अंतिम क्षण में जितना भी उनके पास शक्ति था भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, सारे भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे थे, और साथ साथ उनकी इच्छा थी कि मैं फिर से जो है विश्व का भ्रमण कर प्रचार करूँ। तो यही भाव जो है उनके मन में था कि हमारा जो मोमेंट है वो केवल किसी तीर्थ क्षेत्र में रहकर केवल साधना करना नहीं है मगर जाकर प्रचार करना है। तो ये जो है श्री प्रभुपाद जी का भाव था, यही भाव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का था, और ये दोनों आचार्य किसके संतुष्टि के लिए कार्य करते, तो ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था कि सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए। तो केवल ये इस उद्देश्य जो है वो प्रचार करने के हेतु वहाँ जाना उत्सुक थे। फिर श्रील प्रभुपाद जी को बहन थी पिशिमा जो है, तो भक्ति चारु महाराज को श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि आप उनका ख्याल रखें और उनका पुत्र है, उन दोनों का आप ख्याल रखिए। जैसे एक श्रील प्रभुपाद बीमार होने के कारण उनके रूम में प्रवेश करने के लिए थोड़ा अनुमति लेना पड़ता था, तो कई शिष्य जो है तो पिशिमा प्रभुपाद जी को बहन है उनको भी रूम में आने के लिए रोक दिए थे। तो प्रभुपाद जो है पिशिमा के साथ बात करते समय उनको कहते थे कि आप जो है मुझे क्षमा करना, मेरे शिष्यों ने आपको रोक दिया है। फिर भक्ति चारु महाराज के पास वो बताते हैं कि वो मेरी गुरु बहन ने, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हरिनाम दीक्षा ग्रहण किया है, तो अगर कोई उनको दुख देता है अपराध करता है तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि उसकी उससे क्षमा याचना करना है। तो भक्ति चारु महाराज जो है संवाद में हमेशा बताते थे कि आपने जो है केवल भगवान की सेवा की है और इतना सारा भगवान का सेवा किया है, कभी भी आपके मन के अंदर कोई ये भाव नहीं था कि आप किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकते या तकलीफ नहीं दे सकते थे। मिश्र प्रभुपाद कहते थे कि वैसे नहीं है, मैं जो है मुझे बहुत अहंकार जैसे लगता था और उस कारण जो है मैं कई बार जो है प्रचार करते समय किसी को डांट देता था, कभी मैं किसी बहुत बार रास्कले शब्द का उपयोग किया है। तो अनोइंगली भी या बिना हेतु कभी कभी हमारे हाथ से अपराध हो सकते हैं। मैं भक्ति चारु महाराज उनको बता रहे थे प्रभुपाद को कि आप तो भगवान के अत्यंत प्रिय है, तो आपके हाथ से अपराध होना जो है वो मुश्किल है। मगर प्रभुपाद कहे थे कि मैंने प्रचार जो है एक हाथ में भागवत और दूसरे हाथ में एक्स यानी कुराड़ लेकर, क्योंकि जब समय आया तो सिद्धांत के रक्षा के लिए जो आवश्यक है मैं किया और साथ साथ जो है ये भी किया। तो उसमें जो है भक्ति चारु स्वामी महाराज जो है श्री प्रभुपाद जी की सेवा में रहे और विशेष करके जो समाधि सेरेमनी हुई तो प्रभुपाद जी ने उनको गौड़िया मठ में भेजा था और समाधि के सारे जो नियम है उसके बारे में लिख के लिया था। फिर प्रभुपाद जी ने भक्ति चारु महाराज को ये भी कहा था कि मेरे तिरुभाव के पश्चात सारे वृंदावन में जो भी मठ है मंदिर है उसमें आप फीस्ट का आयोजन करो और उसके लिए सारी व्यवस्था लक्ष्मी जो है उसकी व्यवस्था कीजिए। और फिर जब भी एक्चुअल श्री प्रभुपाद जी का समाधि है तो उसमें जो है समाधि में बड़ा एक खड्डा किया जाता है, 8-9 फीट का खड्डा होता है। तो उसमें अंतिम जो है समाधि विधि के समय गौड़िया मठ से 2 व्यक्ति थे और तमाल कृष्ण महाराज हिजोलेंस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और हिजोलेंस भक्ति चारु स्वामी महाराज जो है उन्होंने ये श्री प्रभुपाद जी का समाधि का सारा कार्य जो है वह किया है। और आज हम देखते हैं कि इन दोनों की जो समाधि है वो मायापुर में होगी श्री प्रभुपाद जी के पुष्प समाधि के सामने। और विशेष करके आप भक्ति चारु महाराज के एक विशेष आप समझेंगे तो श्री प्रभुपाद जी ने जो कुछ तत्व दिए थे, यानी श्री प्रभुपाद हमेशा यह कहा करते थे कि ये जो इस्कॉन संस्था है ये वास्तविक मेरा शरीर है और बीबीटी है ये मेरा हृदय है। अब भक्ति चारु महाराज ने ये इस्कॉन संस्था है उसकी पूरी तरह से रक्षा करने की पूरी अपने जीवन में कोशिश की, क्योंकि इस्कॉन के 50 साल के इतिहास में और विशेष करके तिरुभाव के पश्चात बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया, मगर भक्ति चारु स्वामी महाराज एक जो थे उन्होंने जो भी श्री प्रभुपाद जी से सिखाता और उनका मूड जो है पूरी तरह से प्रिजर्व करने का कोशिश किया। बहुत सारे लोग जो है कई यहाँ वहाँ गए, उनके मन के अंदर कुछ प्रकार का संभ्रम निर्माण हुआ, मगर श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति चारु महाराज को यह कहा था कि एक जीवन जो है आप कृष्ण के लिए दे देना, और वो जो भक्ति चारु महाराज ने पूरी तरह से किया। अपने शिष्यों को भी वो हमेशा यह कहा करते थे कि इतने सारे जीवन हम लोग ने जिए हैं उसमें से अगर एक जीवन हम कृष्ण के सेवा में देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं है, उल्टा हमें लाभ ही है। और साथ साथ जैसे श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो आपके परस्पर के प्रेम पूर्वक विवाह से प्रतीत होगा, और जीबीसी जो है अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी जो है नेवर लिव इस्कॉन, कि कभी भी आप इस्कॉन संस्था है वो छोड़ के नहीं जाना, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो तत्व है ये तत्व आप हमेशा उनके प्रवचन में सुनते रहेंगे। आप उनके साथ बातचीत करते हो, उनसे साथ मार्गदर्शन लेते हो या उनका प्रवचन सुनते हो, तो उसमें जो प्रभुपाद जी को ये तत्व थे कि जैसे योर लव विल बी शोन हाउ यू विल कोऑपरेट, किस प्रकार से आप जो है एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करते हैं वो आपके सहकार्य से होगा, प्रतीत होगा। जीबीसी का अधिकार और कभी भी इस्कॉन संस्था जो है वो छोड़कर नहीं जाना। तो कहा करते थे कि व्यक्ति स्वयं में कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो और कितना भी उसके पास मैनेजर कैपेसिटी न हो, मगर हम इस प्रकार से संस्था को छोड़कर जाते हैं तो शायद हम भक्त बन सकते या भक्त रह सकते, भगवत धाम वापस भी जा सकते, मगर प्रचार कार्य जो है इतना नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों के साथ शुरुआत में सेवा की और मैंने देखा कि वो बहुत विद्वान है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत है, मगर कुछ छोटे मतभेद के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम संस्था के बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से भक्ति करेंगे और स्वतंत्र रूप से प्रभुपाद की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति चारु स्वामी महाराज हैं, हमेशा उनको जाके मिलते थे, देखते थे कैसे चल रहा है, और फिर बाद में उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो है उनकी प्रचार करने की क्षमता जो है धीरे धीरे घटती गई। तो हमेशा कहा करते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्टीट्यूशन स्थापन किया और श्रील प्रभुपाद जी स्वयं को अपने आप को इंस्टीट्यूशन से अलग नहीं समझते थे, वो स्वयं इंस्टीट्यूट का हिस्सा समझते थे और उसी हिसाब से कार्य करते थे। तो वो कहते कि आज के कलयुग में अगर आपको विश्व भर कृष्ण भावना का प्रचार करना है तो इंस्टीट्यूशन की बहुत आवश्यकता होती है, बिना इंस्टीट्यूशन से ये कार्य करना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ कलेक्टिव मैनेजमेंट जो है, यानी जीबीसी अकेले नहीं है, तो जीबीसी में एक बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये कलेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर वो बहुत विशेष रूप से भर देते थे। और इसी कारण आप देख सकते कि कैसे इस्कॉन का प्रचार है वो विश्व में फैल गया है। हालांकि इस्कॉन के इतिहास में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे विघ्न आए, मगर कलेक्टिव मैनेजमेंट होने के कारण इस्कॉन जो है हमेशा बढ़ते ही गया। और विशेष करके जब भी कई बार जो है लोग इस प्रकार से संदेह निर्माण करते हैं कि क्यों श्री प्रभुपाद जी के कई शिष्य है वह इस प्रकार से शरीर त्याग करते हैं। हालांकि लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर त्याग कर रहा है तो उस समय सारे वैष्णवगण उपस्थित है, भगवान का हरिनाम चल रहा है, और ऐसी स्थिति में देह त्याग करना बहुत एक शुभ माना जाता है। और कई लोग जो है अगर कोई अपघात में निधन होता है या और किसी विषम स्थिति में निधन होता है तो मन के अंदर संदेह निर्माण होता है। तो उसमें एक वराह पुराण का एक श्लोक है कि वातादि दोषेन मद भक्तो माम नच स्मरित, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। कि अगर कोई वात आदि दोष है और इस दोष के कारण अगर मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं करता है तो मैं उसका स्मरण करते उसको परम गति प्राप्त करता हूँ। तो इसलिए हमको ये विश्वास है कि इन्होंने इतने साल श्री प्रभुपाद जी को बिना किसी डिवेशन से इतना प्रेम पूर्वक इस्कॉन संस्था का रक्षा किया, कितने भी अपसिद्धांत आए, कितने भी अलग अलग मत प्रवाह आए, कितनी भी समस्या आए, उन्होंने एक श्री प्रभुपाद जी का सेवक नाते ये संस्था जो है उसको ठीक तरह से रखने का प्रयास किया है। तो जरूर है कि श्री प्रभुपाद जो है उनको स्वयं आगे के सेवा के लिए जरूर लेके गए होंगे। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो भक्तचारू महाराज जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है ओशन ऑफ ब्लिस। तो अगर आप लोगों को अवसर मिले तो अवश्य पढ़िए। बड़ा सुंदर ग्रंथ है वो, जिसमें उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ उनकी भेंट कैसे हुई इसका वर्णन किया। तो आज मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें से। तो 1945 में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी फिल्म लाइन में बंगाल में बहुत बड़े सफल व्यक्ति हुए थे। आइए। तो कहा गया कि उस समय बंगाल में बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां होती थी, पूरे भारत में ही, लेकिन उनके घर पर दो गाड़ियां थी। तो इतने उनका परिवार जो था काफ़ी धनवान था। उनकी माता का उनके प्रति बहुत प्रेम था और वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उन्हें निरंतर कृष्ण और राम के विषय में बताती थी और कहती थी कि कोई भी अगर समस्या आए और कृष्ण और राम को याद करो। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी माता को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और फिर अचानक भक्तचारू महाराज जब 10-12 वर्ष के थे या जितना भी उनका उम्र था उस समय, उनको अलग घर पे भेज दिया गया और उनके भाइयों को भी दूसरे जगह भेज दिया। इस तरह उनकी माता से उनको दूर कर दिया और काफ़ी वो उनको मिस करते थे। और फिर कई महीनों के बाद उनको मिलने के लिए एक बार गए तो उनकी माता ने बड़े प्रेम से उनको आलिंगन किया और बहुत रोई। और कुछ ही दिनों के पश्चात कुछ रिश्तेदार आके बोले उनको, भक्तचारू महाराज जी को, कि चलिए आपको माता के पास चलना है। लेकिन जब लेके गए तब मालूम पड़ा उनका निधन हो गया था। तो ये जो था उनके जीवन में बहुत बड़ा सदमा का विषय था, कम उम्र में उनकी माता का निधन और उनके इस बीमार अवस्था के कारण, निधन के कारण उनके पिताजी के ऊपर बहुत सदमा लगा और उनको पश्चाताप होने लगा कि शायद मैं अपने फिल्म लाइन में इतना बिजी रहता था कि मैंने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, इसके लिए इसका निधन हो गया। उसके कारण उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपना जो बिजनेस है उस पर ध्यान देना बंद कर दिए और धीरे धीरे उनके पूरे परिवार में आर्थिक रूप से भी बड़ी समस्या आ गई। फिर उनके पिताजी ठीक तरह से कुछ नहीं कर पा रहे थे तो फिर दूसरे किसी रिश्तेदार के पास त्रिपुरा में उनको भेज दिया। फिर वहाँ पे उनकी अच्छी तरह परवरिश की गई, पिताजी के साथ वो पत्रों के साथ संपर्क रखते थे। फिर वो जब जवानी के स्तर पर आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अब अलग अलग देशों का भ्रमण करूं। तो अपने एक मित्र को लेकर वो बम्बई से निकले और बगदाद गए और बगदाद से लेकर यूरोप जाने के लिए तैयारी किए। तो वो बताते हैं हमेशा कि राधानाथ महाराज और मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। महाराज वहाँ से अमेरिका से भारत आए अपने एक दोस्त को लेके और मैं भी एक दोस्त को लेकर निकला वेस्ट की तरफ, बिल्कुल उल्टा। और घूमते हुए काफ़ी वो रोमांचक कथा है किस तरह वो अलग अलग इराक में, टर्की में, खतरनाक खतरनाक जगह में वो, लेकिन उनके जो उस समय के कथाएं हैं वो सब बहुत ही लविंग एंड सात्विक, ऐसा कुछ महाराज जैसा वो जो एक्शन पैक्ट वगैरह कुछ नहीं था। उनको अच्छी तरह से अच्छे लोग मिले, उनके साथ दोस्ती किए, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया है। फिर वो यूरोप पहुँचे और कलकत्ता में उनके किसी रिश्तेदार ने एक जर्मन औरत से विवाह किया था, जिसके कारण उनका जर्मनी के प्रति काफ़ी आकर्षण था। तो घूम घाम कर जर्मनी में उनके एक दूसरे रिश्तेदार बस गए थे, कज़िन, उनके पास पहुँचे और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में उन्होंने उस समय केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। तो उस समय लगभग ये 1970 की बात है, तो तब वो वहाँ पर कुछ पढ़ने लगे, लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स के हॉस्टल में कुछ अमेरिकन और कुछ ब्रिटिश और वहाँ के जो जर्मनी के छात्र, एक दिन मेस में खाते खाते कुछ बोल दिया कि अरे भारत में तो बहुत लोग भूखे मरते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी को भूखे मरते नहीं देखा। अरे तुमको क्या पता, रिपोर्ट में तो सब आता है कि सब वहाँ आधे भूखे मरते हैं, तो सब दरिद्रता है वहाँ पर। तो महाराज को लगा कि अरे तो हमारे भारत का अपमान कर रहे हैं, तो तुरंत बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पर हम लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहते हैं क्योंकि हमारा ध्यान आध्यात्मिक विषयों पर ज़्यादा रहता है। तो बोले क्या आध्यात्मिक विषय, तुम्हारे सब साधु वाधु तो गांजा फूंकते रहते हैं। तो बोले नहीं नहीं वहाँ पर बहुत बड़ा आध्यात्मिक धन है, क्या धन है तुम बताओ। तो ये बेचारे तभी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि हाँ आध्यात्मिक धन है लेकिन मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं। तो सबसे पहले उनके अंदर प्रेरणा हुई कि मेरे मातृभूमि के ऊपर आक्रमण हुआ है, भारत के ऊपर, उसको बचाने के लिए मुझे कुछ करना है। तो तुरंत वो वहाँ से अपने दूसरे रिश्तेदार को लेटर लिखे जो लाइब्रेरी चलाते थे और बोले भारत के आध्यात्म के संबंध में जितने ग्रंथ हैं वो सब यहाँ तुरंत भेजो। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वेदांत सूत्र, योग सूत्र पतंजलि का, ये सब जो मेन मेन हमेशा लोकप्रिय पाश्चात्य देशों में बुक्स थे वो सब भेज दिया उनको। तो अगले 2-3 महीने बिल्कुल वो सारे उन ग्रंथों को चाट डाले और पूरा पढ़ने के बाद समझ गए कि अरे जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है, मोक्ष है। और तुरंत जो उस समय पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा के बोलने में बिल्कुल प्रचलित हो गए थे और सोच लिया था कि भौतिकवादी इस प्रकार जो यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर कितना ये लोग ने प्रगति किया है, उसका एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट उनके मन में साक्षात्कार आ गया कि वास्तविक धन तो भारत में है। तो फिर वो तुरंत जून 1975 को लौटे अमेरिका से। 45 का बर्थ है तो 75 मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स के थे वो। तो जून 1975 में सीधा दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, एयरपोर्ट से सीधा गए हरिद्वार और हरिद्वार में जाकर अलग अलग लोगों को मिलना, आश्रमों में घूमना, शिवानंद आश्रम में गए गुरु की खोज में, वन पॉइंट एजेंडा गुरु गुरु गुरु। वहाँ से फिर गए ऋषिकेश, कई उसमें कुछ कुछ कथा वो बताते हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम जो महाराज का अपने 1970-71 में चल रहा था वैसे ही गुरु की खोज में। फिर वहाँ पे भी उनको संतोष नहीं मिला और फिर वहाँ आनंदमय आश्रम में आए और उनके प्रति बड़े प्रभावित हो गए और आनंदमय आश्रम में आकर उनके एक शिष्य थे स्वरूपानंद जी, उन्होंने कहा आप यहाँ रहिए, इनके अंदर आश्रय आपको मिल जाएगा, इनसे आप दीक्षा ले सकते हो, आप यहाँ आश्रम में रह सकते हो। तो उनको लग रहा था कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, लेकिन फिर जब स्वरूपानंद जी उनको भक्तचारू महाराज को लेके गए आनंदमयी माँ के सामने, आनंदमयी माँ ने उनको देख के कहा, तो स्वरूपानंद ने कहा ये हमारे यहाँ ज्वाइन करने आया है आश्रम में, आप इनको आश्रय दीजिए। तो आनंदमयी माँ ने देख के कहा नहीं ये हमारे आश्रय में रहने योग्य नहीं है, इसके गुरु कहीं और हैं, और जब वहाँ पर जाकर ये जिस उस गुरु के सामने जिस दिन वो आत्मसमर्पण करेगा उस दिन के बाद दुनिया इनके सामने आत्मसमर्पण करेगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन उस समय महाराज को लगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आश्रम, सबसे बड़े गुरु, और मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यता है। तो वहाँ से वो निकले और वहाँ से निकलने के पश्चात वो सोचे कि अभी जाऊँ तो क्या, कहाँ जाऊँ। तो वहाँ से निकलकर वो वास्तव में भ्रमण करते हुए कलकत्ता आ गए। और जब कलकत्ता आए तो कलकत्ता में एक जो जिस मित्र के साथ उन्होंने यात्रा आरंभ की, प्रसून, उनको वो मिले। वो शेव्ड हेड, धोती और तिलक में था। तो बोले, यार ये क्या हो गया? तो बोले, यार मैं अभी हरे कृष्णा में आ गया पूरी तरह। तो बोले, लेकिन हम लोग दोनों तो हरे कृष्णा से घृणा करते थे। महाराज बोले, क्यों? क्योंकि जब यूरोप में वो हरे कृष्ण वालों को मिले तो जो भी उनको मिला हरे कृष्ण वाला, पहले दिन उनको गीता दिया, सब दिया, और बाद में बोला कि बंगाल के कुछ प्रसिद्ध उस समय के जो साधु लोग थे उनके विषय में कुछ आलोचना कर दी, और वो मिशन के बारे में भी आलोचना कर दी। तो इन लोगों को लगा, अरे सबसे अधिक काम ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग पाश्चात्य देश के लोग कभी आए नहीं होंगे कलकत्ता और बंगाल, और सीधा आके बैठ के गाली दे रहे, इनको कभी देखना नहीं। तो उसके बाद जब भी वो हरे कृष्णा का कीर्तन देखते थे, जिस दिशा से आ रहे थे ये ऑपोजिट दिशा में चले जाते थे कि इनके सामने ही नहीं आना है। तो फिर बोले, यार अपन दोनों ऐसे थे लेकिन अब ये क्या हो गया? तो फिर उसने कहा कि नहीं, वास्तव में मैं कुछ बुक्स पढ़ने लगा और उससे प्रभावित हुआ, भले उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा हो लेकिन बुक में दम है। तो फिर उन्होंने उनको नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया। तो महाराज जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है जबरदस्त पढ़ लिया उसको, और उसको पढ़ने के पश्चात कन्विंस हो गए कि यही वास्तविक मार्ग है, और प्रभुपाद से मिलने के लिए आतुर थे। प्रभुपाद उस समय थे नहीं। तो ये लगभग जुलाई 1976 से लेकर जनवरी 1977 के बीच फिर वो भ्रमण करते हुए बोले, चलो जब तक मायापुर जाते हैं। तो मायापुर में उनको किचन में लगा दिया, किचन वाले ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे किसी सेवा में लगाया। ऐसा करते करते फिर जनवरी में प्रभुपाद जी को वो कुंभ मेला प्रयाग में मिले। फिर मार्च में प्रभुपाद जी ने उनको प्रथम दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, और फिर अगस्त के महीने में या थोड़े समय के बाद प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा भी दे दी। तो ये तीनों दीक्षा उनको 3 महीने के अंतर्गत मिल गई। तो ऐसा बहुत कम लोगों को प्रभुपाद जी ने दिया। और जैसे ही प्रभुपाद ने उनको देखा प्रथम बार और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कलकत्ता से हूँ, प्रभुपाद का अगला ही स्टेटमेंट था, मेरे सारे ग्रंथों को आप बंगाली में ट्रांसलेट करो। पहले 5 मिनट के अंदर लाइफ लॉन्ग इंस्ट्रक्शन मिल गया। और फिर उस इंस्ट्रक्शन को भक्तचारू महाराज जी ने 1996 में पूरा किया। By 1996 he had translated all the 50 volumes of Prabhupada books from English into Bengali. दिन रात लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी के अंदर ये आत्मविश्वास था कि पहले 5 मिनट के अंदर बिना कोई परिचय के प्रभुपाद जी परमात्मा से जुड़े हुए समझ रहे थे मैं किससे बात कर रहा हूँ, और उनको मिशन दे दिया पहले 5 मिनट के अंदर। तो 1900 तब उस समय से लेकर फिर प्रभुपाद जी के साथ जो उन्होंने सेवा की उसके विषय में सनत कुमार प्रभु ने बताया, और तत्पश्चात प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद 1977 से 87 के बीच श्रीपाद भक्तिचारू महाराज मायापुर में ही रहे, मायापुर में सेवा की अलग अलग कैपेसिटीज में, जयप्रताप महाराज और भवानंद महाराज के अंडर। और 87 में उनको इस्कॉन में इनिशिएटिंग गुरु और जीबीसी दोनों बनाया गया। 1987 में वो 42 ईयर्स के थे तब वो इस्कॉन में गुरु बने और जीबीसी बने, और 1988 में अगले ही साल उनको जीबीसी चेयरमैन बना दिया एक साल के अंदर। और तत्पश्चात जैसे मैंने बताया 1995 में प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को उन्होंने एक संकल्प लिया था कि प्रभुपाद सेंटेनियल तक मैं ये सारे ग्रंथों को बंगाली में ट्रांसलेट कर दूंगा, दैट इज माय ऑफरिंग टू प्रभुपाद। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करके 1996 में सारा जो बुक्स बंगाली में ट्रांसलेट अनुवाद हो गया था। तो 96 में उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब मैं प्रभुपाद जी को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अभय चरण सीरियल उन्होंने लॉन्च किया, और अभय चरण सीरियल में उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को जुटाया, और फिल्म डायरेक्टर के पुत्र थे तो उसका संस्कार कहीं ना कहीं प्रकट होना था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि ये फिल्म विल्म में कैसे किए। तो फिर जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ा तो फिर कनेक्शन आया। तो बताते थे कि उनके घर पर जो दो कार थे, एक शहर में घूमने के लिए और दूसरा जीप था, जो उनके पिताजी शूट में जब जाते थे बाहर यहाँ वहाँ आउटडोर के लिए, उसको आउटडोर शूट के लिए रखते थे एक और गाड़ी। तो प्रभुपाद जी के ऊपर जो फिल्म बनाया ये दूरदर्शन पे, नेशनल दूरदर्शन नेशनल टीवी पे चला, करोड़ों लोगों ने उसको देखा, और उसके बाद डीवीडीज भी जो बने हजारों की संख्या में वितरित हुए। इस्कॉन के इतिहास में श्रील प्रभुपाद के ऊपर केंद्रित इतना विस्तृत कोई दूसरा अभी तक फिल्म नहीं बनाया। और अभी दो महीने पहले महाराज जी कलकत्ता में कुछ भक्तों को बता रहे थे कि अब मेरी इच्छा है कि मैं अगले दो साल के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरा फिल्म बना के विश्व भर में प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन वो कार्य उनके द्वारा या उनके इच्छा से और किसी के द्वारा संपन्न होगा, लेकिन उनके मन में हमेशा इस तरह के विचार चलते रहते थे कैसे मिशन को आगे बढ़ाना है। तो 2004 की बात है, 2001 और 2002 के आसपास, 2002-03 के आसपास उनके मन में इच्छा हुई कि मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं, तो श्रीमती उमा भारती जी उस समय ये थीं मुख्यमंत्री, उन्होंने महाराज जी को निमंत्रण दिया, और महाराज जी राधारमन प्रभु और उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे उमा भारती जी के, वो गवर्नमेंट के प्लेन में पूरे उज्जैन के इलाके में घूम रहे थे, पूरे एमपी में घूमा, क्योंकि उमा भारती ने कहा चीफ सेक्रेटरी को, महाराज जी को पूरा एमपी का चक्कर लगाओ, जिधर अच्छा लगे उधर लैंड देना। तो मुझे राधारमन प्रभु ने बताया ये, तो वो चीफ सेक्रेटरी बार बार पूछता था महाराज ये एरिया कैसा लगा, हम अब यहाँ पे पहुँच रहे ये कैसा लगा, फिर तब जाकर उज्जैन में जो ये लैंड है उनको दिया। तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 9-10 महीने के अंतर्गत इतना बड़ा मंदिर तैयार किया। नित्यानंद त्रयोदशी 2006 की बात है, मैं उसमें उपस्थित था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस दिन उन्होंने तीनों ऑल्टर तैयार किए, और तीन ऑल्टर के बाद अब उन्होंने पिछले दो साल के अंदर और 2-3 ऑल्टर जोड़ दिए। अभी वहाँ पर नरसिंह देव भी हैं और भी कुछ कुछ डीटीज आ गए वहाँ पर। तो 2007 में महाराज ने पूरे इस्कॉन के मंदिरों के लिए ऑल्टर की व्यवस्था किस तरह हो, तो उसका एक प्रोडक्शन वहाँ यूनिट चालू कर दिया। फिर इस्कॉन के पानी हाटी में 2013 में उन्होंने अपना एक सेंटर चालू किया, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा किए, और 2014 में उन्होंने आरोग्य निकेतन अर्थात आयुर्वेद से रिलेटेड उन्होंने स्थापना की अपने उज्जैन में ही। तो वास्तव में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल सोशल डेवलपमेंट ने 2016 में, जो कि न्यूयॉर्क के यूएन से जुड़ा हुआ था, महाराज जी को जो है पुरस्कृत किया कि पूरे समाज में किस तरह वो शांति फैला रहे हैं। और उसके पश्चात 2018 में वो जीबीसी चेयरमैन बने, 1988 के बाद फिर दूसरी बार जीबीसी चेयरमैन 2018 में बने। और उस समय जब जीबीसी चेयरमैन बने बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि उस समय न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, ब्रुकलिन मंदिर को इस्कॉन से दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय मैं इन सभी जो आदान प्रदान को बहुत गहरी रूप से देख रहा था, और देखा कि महाराज ने कैसे एक बड़े ही शक्तिशाली क्षत्रिय रूप धारण करके उस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मंदिर को इस्कॉन से दूर जाने से बचाया, और पूरा लीगल टीम तैयार करके जो लोग इस्कॉन से उस मंदिर को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे बचाकर फिर उसके एक साल के अंतर्गत न्यूयॉर्क कोर्ट ने उस मंदिर को इस्कॉन के हवाले और भक्तिचारू महाराज एस जी बी सी चेयरमैन इस्कॉन के अंदर उसको लेके आए। तो ये बहुत बड़ी घटना थी और उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने इस न्यूयॉर्क के सिचुएशन को संभाला। तो वास्तव में उस समय जो उनके ऊपर स्ट्रेस था वो इतना अधिक था कि कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ कई दूसरी भी समस्या चुनौतीपूर्ण घटनाएं साउथ अफ्रीका में हुई, पेरिस में हुई, सिएटल में हुई। तो सिएटल का तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वहां पर बहुत समस्या थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा कांग्रीगेशन बिखर जाएगा और महाराज का कोई लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा कि हो सकता है किसी प्रभुपाद शिष्य के साथ अन्याय हो सकता है, उसको बचाने के लिए और उस कांग्रीगेशन को बिखरने से बचने के लिए महाराज जी वहाँ प्रवेश किए और जीबीसी ऑन स्पेशल ड्यूटी वहाँ अपॉइंट हुए। और पिछले लगभग 4 साल से मैंने देखा किस प्रकार उन्होंने पूरी स्थिति को नकारात्मक से सकारात्मक बनाया। तो ये जो है उनका एक दूसरा रुख है जो सामान्य इस्कॉन के भक्त लोग इतना अधिक देखे नहीं, परिचित नहीं है। लेकिन जैसे सनत कुमार प्रभु ने कहा, उनका प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन इस्कॉन के प्रति इतना उत्तरदायित्व का भाव था कि कहीं पर भी उनको लगा कि मुझे अपना उत्तरदायित्व निभाना है तो वो तन मन धन सब कुछ एक करके वहां पहुंच जाते थे। एक हमारे मित्र हैं सिएटल में, उनका नाम है सेंथिल, और उनके घर पे महाराज रहते थे और अब वो महाराज जी के शिष्य बन गए। तो मैं देखा कि कैसे उनका जीवन पूरा परिवर्तन हुआ महाराज जी के संग से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 1993 में जब चौपाटी इस्कॉन पुनः कन्फ्यूजन के बीच में इस्कॉन वापस आने का सोच रहा था, उस समय महाराज जी का विजिट बड़ा महत्वपूर्ण था। मंदिर में तो जो मिलन हुआ महाराज जी ने, राधानाथ महाराज जी ने उसका वर्णन किया, लेकिन उसी विजिट में भक्तिचारू महाराज ने खार रोड में महाप्रभु के घर पर भी एक लेक्चर दिया था। महाप्रभु के जो क्या महल, मुरली महल, मुरली महल के वहाँ पर एक उनका रहता था गैरेज, वहाँ पर मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि गुरु तत्व को लेकर सभी लोग बड़े कन्फ्यूज थे कि गुरु तत्व क्या है। तब भक्तिचारू महाराज का वो जो लेक्चर था महाप्रभु के घर के गैराज के अंदर, वो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने जो भक्ति रत्नाकर से पूरा एक गुरु फॉलडाउन का एक पर्टिकुलर सेक्शन है उससे कोट करते हुए बताया कि कैसे गुरु तत्व ये सनातन है, भगवान श्री बलराम से प्रकट होते हुए हर जीव का उद्धार करने वो हमेशा कायम रहता है, इसलिए वो किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं। जब तक हम उस तत्व से जुड़े हुए हैं तब तक वो चलायमान रहता है कि जो भक्त को अगर चाहिए तो उस गुरु तत्व के साथ वो हमेशा जुड़ा रह सकता है, चाहे बीच में किसी व्यक्ति की समस्या हो ना हो। तो इसलिए मैंने देखा कि एक तो जो प्रभुपाद जी के 50 बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया तो उनका तत्व के ऊपर कितना पकड़ होगा वो कोई भी समझ सकता है, और उसके साथ साथ महाराज जी इतिहास का इतना ज्ञान रखते थे कि आप लोग हैरान हो जाओगे कैसे वो ऐतिहासिक दृष्टि से जब गौड़ीय संप्रदाय का वर्णन करते थे वो बड़ा ही रोमांचक रहता था। और उस समय के ऐतिहासिक स्थिति जब महाप्रभु थे उसको भली भांति समझ रहे थे, और बंगाल में पले बड़े होने के नाते उनका उसके प्रति एक पूरा एक लगाव था, जुड़ाव था। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो उनके साथ आदान प्रदान मैंने देखा वो था जीबीसी कॉलेज के समय। 2015 में हमने आरंभ किया, महाराज जी को हमने निवेदन किया कि आप ट्रस्टी बनिए, तो महाराज जी ट्रस्टी बन गए। उसके बाद हमारे रसिक रमन प्रभु ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, प्रभुपाद्स कोट्स ऑन लीडरशिप, प्रभुपाद्स विजन फॉर लीडरशिप इन इस्कॉन, बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया। तो हमने सोचा था कि पीडीएफ भेजेंगे सबको, जितने लोग अटेंड करेंगे उनको पीडीएफ भेज देंगे, वो लोग अपना डाउनलोड करके देख लेंगे। तो जब महाराज जी को मैंने भेजा तो महाराज ने तुरंत कहा, अरे ये तो इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है कि प्रभुपाद ने लीडरशिप के हर पहलू पे क्या बोला है, उसके कोटेशंस हैं, ये इतना अच्छा बना है कि मैं इसको प्रिंट करूँगा। मैंने कहा महाराज जरूरत नहीं है, अभी स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा 3 हफ्ते में कौन प्रिंट विंट करते बैठेगा, किसके पास टाइम है। महाराज ने कहा, अरे तुम क्यों, मैं करूँगा प्रिंट, मैं करके लेके आऊँगा, अपने खर्चे से करके लेके आऊँगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करके लाइए। तो मुझे लगा भूल जाएंगे, लेकिन आए, उनके पास लगभग 200 कॉपी वो बुक के थे, और हर भक्त जो अटेंड किया उनको वो बुक दिया गया स्टार्टिंग में। और मैंने पूछा, महाराज इतना आप ये कष्ट क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस्कॉन भविष्य में चलेगा तो केवल मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज पर नहीं चलेगा, प्रभुपाद जी के विजन के अनुसार जो उसको चलाएंगे तब जाके ये फैलेगा, फलेगा। तो इसलिए ये केवल सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए डायरेक्शनल मैप है। तो इसलिए मैं उस समय समझ गया कि उनका प्रभुपाद जी के वाणी के ऊपर इतनी श्रद्धा थी, और वो हमेशा जैसे बोलते थे कलेक्टिव मैनेजमेंट, और गौड़ीय मठ का एग्जाम्पल देते थे, उनका फेवरेट एग्जाम्पल था, गौड़ीय मठ में आचार्य बनाए, एक फॉल डाउन हुआ पूरा गौड़ीय मठ ठप हो गया, यहाँ पर कितने फॉल डाउन हुए लेकिन फिर भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि कलेक्टिव, क्योंकि प्रभुपाद के इच्छा के अनुसार किया, प्रभुपाद संतुष्ट हुए, उनके संतोष से ये संस्था आगे चलेगी, ये इनका पूर्ण विश्वास अब तक रहा है। और वही जीबीसी में से एक जीबीसी हैं जिन्होंने जीबीसी कॉलेज के लेक्चर ऑलमोस्ट हर देश में दिया है। मुंबई में जब हुआ लेक्चर दिया, पूना में जब हुआ लेक्चर दिया, इस बार तिरुपति में हुआ लेक्चर दिया, रशिया में हुआ वहाँ जाके लेक्चर दिया जीबीसी कॉलेज में, नॉर्थ अमेरिका में जीबीसी कॉलेज में लेक्चर दिया, साउथ अमेरिका के जीबीसी कॉलेज में लेक्चर दिया। मतलब इनविटेशन तो मुझे भी था, लेकिन मैं केवल स्केड्यूल सोच के मैं बोला बहुत थक गया हूँ, मैं इतना दूर दूर नहीं जा सकता, मैं मना कर दिया। लेकिन महाराज जी गए, 70-75 वर्ष के बीच की आयु में वो गए, वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनके आधे उम्र के हैं हम, लेकिन फिर भी हम लोग बोले यार इतना दूर कौन जाएगा। वो तभी जा सकते हैं जब उस उनको लगे कि ये प्रभुपाद के लिए बड़ा आवश्यक है, मुझे करना ही है, वो स्पिरिट के ऊपर ही आदमी वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। ये मैंने साक्षात देखा, क्योंकि जिस सेमिस्टर में उनका लेक्चर था उस समय मेरा भी लेक्चर था, फिर मैं टिकट बुक करूँगा करके फिर लास्ट में मैं बोला यार बहुत लंबा सफ़र है, मैं नहीं आ सकता, मना कर दिया। लेकिन फिर मैं फोटो देखा, महाराज है, मैंने कहा कमाल है, क्या स्पिरिट है इन लोगों का। फिर जो लेटेस्ट हमारा आदान प्रदान हुआ था वो कुंभ मेला में, 2016 के कुंभ मेला में उज्जैन, तो दामोदर प्रभु मैं हम लोग सब प्रसाद में लगे थे, तो महाराज जी मेन होस्ट ऑर्गेनाइजर थे। तो महाराज जो है हम लोग को बोले कि देखिए प्रसाद अच्छे से अच्छा बनाओ, कुछ चिंता मत करो। तो हमने कहा अरे सनक सनातन प्रभु तो लिमिट करो, बोला नहीं नहीं जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो महाराज का एक था कि बिल्कुल स्पिरिट था कि कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, जितने लोग आए यहाँ पर इस्कॉन के पंडाल में आकर उनको लगे सबसे बेस्ट पंडाल है और प्रभुपाद का ग्लोरी होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्रीचिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। तो सनक सनातन प्रभु और सार्वभौम प्रभु और हम लोग तो हमेशा अपना मेन प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाए, थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हो गया, और शाही स्नान के 2-3 दिन एक्टिविटी दिखाओ हो जाता था। तो हम बोले अपने यहाँ तो प्रचार के लिए कोई इतना कुछ ध्यान देते नहीं हम लोग। तो महाराज बोले नहीं, प्रचार नंबर 1 होना चाहिए। हमने कहा महाराज जी केवल प्रसाद के लिए लोग कम हैं, अब प्रचार के लिए कहाँ से लाएं? तो महाराज ने कहा हम लोग 3D जो मल्टीमीडिया डोम लेके आएंगे और ये 3D मल्टीमीडिया डोम यहाँ बिठाएंगे। हमने कहा ये तो गांव है और तो टेम्पररी है, यहाँ पर इतना बड़ा हाईफाई लाएंगे तो उनको कौन देखे? बोले नहीं, हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जब लोग इसको देखेंगे तो हजारों हजारों अखाड़ों में इस्कॉन का जो पंडाल है ये फेमस हो जाएगा। तो मैं तो बोला कि भैया ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो फिर और कुछ सेवा इसमें भी मिल जाएगी। तो हम चुपचाप बैठे और देख ही रहे थे कि सोचा कि चलो महाराज जोश में बोल रहे हैं, मीटिंग के समय जोश बहुत लोगों को होता है, फिर थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कुंभ मेला में पहुँचे, डोम हाजिर, प्रकट कर दिया महाराज ने डोम को और खचाखच भीड़। अब कुंभ मेला में तो आधे से ज़्यादा गांव वाले ही आते हैं और सब लोग लाइन लगाकर बैच बाय बैच अंदर पूरा गीता का वो लोग देख रहे हैं। और तब मैं समझ गया कि महाराज जी का ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लेवल पे कुछ करो, ऑलवेज डेयर टू ड्रीम बिग, डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम एंड ग्लोरीफाई प्रभुपाद। और वास्तव में लगभग 15 दिन वो चला, उसके बाद तूफान आ गया, फिर वो टूट फूट गया, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो 15 दिन वास्तव में पूरे कुंभ मेला में इस्कॉन का टेंट सबसे प्रसिद्ध चला, हजारों की संख्या में लोग केवल उसको देखने आते थे। और रास्ते में चलते चलते कोई हमको मिल जाते थे, बाबा बाबा बोले, अरे वो पिक्चर कहाँ दिखा रहे बाबा? वो आसमान में पिक्चर दिखा रहे बोले, क्योंकि डोम में ऐसे ऊपर देखना पड़ता है। वो कहाँ है बताओ? बोला कि आप लोगों के यहाँ पे कहीं चल रहा है, कहाँ है बताओ? तो वास्तव में जो महाराज जी का प्रीचिंग स्पिरिट और उनका जो प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा, ये अनिर्वचनीय है। यहाँ पर GBC कॉलेज के समय और उसके पहले, GBC मीटिंग के पहले समय और उसके पहले जब आए, तो एक बार मुझे याद है हम लोग ब्रेकफास्ट में हम लोग यहाँ पे किसान का जैम हम लोग दे रहे थे, तो महाराज बोले, अरे बाहर का जैम क्यों खिलाते हो, खुद बनाओ, अपना जैम बनाओ। मैंने कहा महाराज हमको क्या पता जैम में, हम तो अपन बनाए नहीं, अपना तो इधर खुद कंस्ट्रक्शन में जैम हो रहा है, अपना जैम बन रहा है। तो महाराज ने कहा तुरंत मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है करके, ऑन द स्पॉट अगले 10 मिनट में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कैसे जैम बनाना चाहिए। तो उस समय महाराज ने कहा देखिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज बनाया इसलिए जिससे कि हम लोग दिखा सके हैं कितना कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं, और उस समय काफ़ी समय तक वो इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए अभी जब वो यहाँ से गए ऑरलैंडो उसी स्वप्न को लेकर, क्योंकि वहाँ पर पिछले साल मैं जब न्यूजर्सी में उनके साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में था, तो मैं महाराज को पूछा, महाराज आप इतना उज्जैन में चल रहा है, मायापुर में चल रहा है, वो सब छोड़ के ऑरलैंडो में कहाँ आके बैठ गए? तो उन्होंने कहा देखिए प्रभुपाद जी की गो रक्षा के प्रति इतना प्रेम था और करोड़ों की संख्या में गायों की हत्या हो रही है अमेरिका में, तो मैं ऐसा एक काउ प्रोटेक्शन का एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि लावारिस गायों को बचा के, हम कटने से बचा के लेके आए और उनको पालें। तो गो माता के सेवा में उन्होंने वहाँ पर ये ऑरलैंडो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो चाहते थे कि वहाँ पर बहुत अच्छा कुछ हो, क्योंकि प्रभुपाद जी वेस्टर्न प्रीचिंग चाहते थे और वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था। इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए महाराज जी प्रयत्नशील रहे और अपना अंतिम समय तक प्रभुपाद जी के इस स्वप्न को साकार करते हुए वो शिला प्रभुपाद जी के पास ही पहुँच गए। हम महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी के हृदय में भी शिला प्रभुपाद जी और राधा कृष्ण और महाप्रभु के इस मिशन के प्रति उसी प्रकार की निष्ठा वो प्रदान करें। परम पूज्य भक्तचारू स्वामी महाराज की, मैं आदिकेश्वर प्रभु से निवेदन करूंगा वो भी कुछ बताएं।
हरे कृष्णा। सनत कुमार प्रभु और गौरांग प्रभु अपने निजी जीवन में इतना सब उत्तरदायित्व कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो दूसरे ऐसे वैष्णव को पहचान सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि भक्ति चारू महाराज से तो बहुत बार हम मिले थे, लेकिन आज ये सब सुनकर लग रहा है कि क्या क्या किया है उन्होंने और कैसे किया उन्होंने। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ जो कुछ आपको सुनना था आप सनत कुमार प्रभु और विशेष करके गौरांग प्रभु ने तो पूरा इतना इतिहास इतना डिटेल्स निकाला है, मुझे मालूम नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम सब इस भक्ति के मार्ग में आने से पहले ये गुरु शिष्य परंपरा क्या होते हैं, हमें किसी को कुछ मालूम नहीं था ये क्या होता है, साधु क्या होते हैं, हमारे जीवन में उनका क्या रोल है। तो एक तरह से देखें तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भाग्य है, हाँ जो कुछ भी है कि हमें ये देखने को मिल रहा है। तो मैं सिर्फ एक याद आ रहा है कि एक बार भक्ति चारु महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप उन दिनों में इतना संघर्ष कर रहे थे, आप अकेले थे, मुझे लग रहा था अगर मैं भी साथ में होता तो बहुत कुछ मैं आपको सेवा करता था। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, मैं कभी अकेले था ही नहीं, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ में थे। तो आज मुझे याद आ रहा है कि अगर भक्ति चारू स्वामी महाराज से भी यही सवाल करते हैं तो वो भी यही जवाब देते कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि मैं जब सुन रहा हूँ कि हर एक विषय में हर एक प्रोजेक्ट में हर एक जो भी समस्या सामने आता था वो सिर्फ प्रभुपाद को याद करते थे कि प्रभुपाद को कैसा लगता अगर मैं ये करता तो बहुत ही एक विशेष उनका जीवन रहा। खास करके कुछ दिनों से उनको जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं लोगों ने उनको चेतावनी दी कि इस हालत में आपको नहीं जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं लीडर यहाँ पे कैसे रह सकता, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद चाहते थे कि मैं अगर मेरा अंत होना है तो रणभूमि में ही होगा, प्रचार करते हुए जैसे उदाहरण दे रहे थे कि जैसे भीष्म पितामह ने, सो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि वही स्पिरिट जो बार बार हमें सुनने मिल रहा है कि अगर कुछ करना है तो बस हाँ फाइट करते ही करेंगे। तो उन्होंने भी पूरा रिस्क जानते हुए भी वहाँ गए और बहुत ही कम समय में उनकी ये हो गई है, एकदम स्वस्थ थे और बुखार आ गया, हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद हर दिन उनका एक दिन के बाद बस यही सुन रहे थे कि भक्ति चारू महाराज जाने की तैयारी में है। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा का जो एक प्रेम है शिष्य और गुरु का, तो मैं तो ऐसे समझता हूँ कि ये मेरा भाग्य है कि एक विटनेस हूँ मैं कि हम देख रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी प्रेम होता है, ऐसा भी एक हाँ शरणागति होती है जो पूरा तन मन सब छोड़कर पूरे सिर्फ अपने गुरु के प्रेम के लिए क्या क्या कर सकते। सो आज के दिन मैं यही जो बोल रहे हैं मैं वहाँ बैठ के सुनना चाहता था, लेकिन किसी कारण मैं यहाँ बैठा हूँ और ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना हो रही है। हमें बहुत साधारण लगते होगा लेकिन हम सब इसमें भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सुनने मिल रहा है, जानने मिल रहा है कि ऐसा भी होता है। गुरु और शिष्य अनेक हैं, उसमें से आज के दिन हम खास परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के लिए हम यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं हृदयपूर्वक बस यही प्रार्थना करूँगा कि उनका जो एक स्पिरिट था, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे लिए तो 16 माला जाप करना ही बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। 16 माला जाप किया मैंने और यहाँ पे एक के बाद एक हर क्षण करना, ये सिर्फ हम अपने हृदय में रखेंगे और जो हो सके हम सब भी इस गुरु शिष्य परंपरा में अपना भी एक प्रयास करेंगे कुछ योगदान देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सनत कुमार प्रभु और गौरांग प्रभु ने, बहुत ही अच्छा एक मूड बनाया। हरे कृष्ण।
तो अभी हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर चलेंगे सनातन गोस्वामी तुचारु महाराज।
हरे